जिसके साथ में बातचीत कर रही हूँ तो वो तो यही पर खड़ा है। खड़ा है कहाँ खड़ा है? तुम हमसे दिल्लगी करते, आज ये तलवार तुम्हारे गर्दन पर साफ बैठेगी, बतलाओ जल्दी से। तो मैं झूठ नहीं, मैं सच में कहते यही खड़ा है, वो सवालिया यहीं पर है, मोर मुकुट है और बंसी हाथों में खड़ा तो है, तुम उसको तो नहीं देखता? नहीं दिखता, बस हाथ थोड़ा सा रख दिया, बस देखते ही पागल हो गए, उनके चरणों में ही लुढ़क गए। कहा जी आप नहीं घर में रहूंगी, घर से निकल। बस आज तक का पति और ये का संबंध था, हमारा पति तो यही है, बस छोड़कर क्या उनके पर चरणों में गिरते 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 नाक रगड़ते ही रह गए और वो घर में नहीं रहे। उन्होंने छोड़े थे, गोपियों की बात क्या है? गोपियों की अद्भुत बात है। इसलिए माँ दुर्जर और गृह श्रृंखला में घर की कठिन बेड़ियों को, हथकड़ियों को एकदम तोड़ फोड़ कर और अथाह अनंत समुद्र को पैरों से लांग गई, माने क्या वेद की मर्यादाओं को, लोक लज्जा इत्यादि को एकदम पार कर गई और कुछ नहीं। ये दूसरों के लिए संभव नहीं, हम लोगों के लिए। और कि तुम्हारे अभी कहेंगे चलो कीर्तन करने के लिए कोई हाथ उठा करके कीर्तन करो तो कोई नहीं करेगा, नहीं एक बार उठा लिया फिर रख देंगे, माला ऐसा पहनेंगे जिसे कि ये कमीज के अंदर मेरे बाहर से ना दिखाई पड़े, लोक लज्जा है ना, लोग क्या कहेंगे, अभी लोक लज्जा है। तब इसी में साधारण में कीर्तन करने में बाहर जाने में लोक लज्जा है, बहुत से लोग यहाँ आते हैं तो छिप करके आते हैं, लोग पूछ रहे कहाँ गए थे, अरे मैं ये सही बाजार गए, ये नहीं कहेंगे गौड़िया मठ में हम लोग प्रवचन में गए थे, लोग अनाप शनाप बातें कहेंगे और कोई कोई झीठ है वो कह देंगे। इसलिए गोपियां सबको क्षण मात्र में तोड़ करके बंधनों को चली गई। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं, यदि ऐसा कहो, कृष्ण मायावी हैं, माया जानते हैं, छल चातुर्य से गोपियों का केवल मात्र मनोरंजन करने के लिए उन्होंने उनका ऋणी बतलाया था, सचमुच में वो ऋणी नहीं है। कृष्ण किसी के ऋणी हो सकते हैं? ये संभव है, किसी का ऋणी नहीं है। नहीं जब ठीक है, गोपियों के ऋणी है और किसी के ऋणी हो चाहे ना हो। महाविज्ञ उद्धव जी इस चीज को समझे, पहले नहीं समझते थे ये गोपियों के ऋणी है। जब तक वो मथुरा में थे वो समझते थे विश्व का सभी कोई उनका ऋणी है कृष्ण का, और जब उद्धव वहां पर गए उन्होंने देखा ब्रज का ऐसा कोई नहीं है जिसके कृष्ण ऋणी नहीं है। गोपियों की तो बात निराली बात है, सबके ऋणी है, ब्रजवासी मात्र के वो ऋणी है। वहां के लोगों ने कृष्ण को जो प्रेम किया, स्नेह किया, वो कृष्ण कभी ऋण चुका सकते हैं? नहीं, भगवान होने पर भी नहीं चुकाए। उनमें से कोई एक मोर कहे जैसे आप कहीं मत जाइए केवल हमारे पास में रहिए, मानेंगे कृष्ण? कहा जब मैं सबको छोड़ दूंगा आपके लिए, आप ही हमारे लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। ब्रज का सखा कोई कहेगा आप सबको छोड़ दीजिए, मैं सबको छोड़ करके आपके पास, गोपियां कहेंगी ये तुम सब जगत को छोड़ करके हमारे पास में आओ जैसे हम सब जगत को छोड़ करके कृष्ण छोड़ सकते हैं, तो लाखों लाखों करोड़ों भक्तों के अंग धर्म के वो ऋणी बन जाएंगे। खूब सो लो, इनको सोने दो, तकिया ला दो तो आनंद जी के लिए आराम से सो जाए, मन से सुनता नहीं है, सब लोग कितना मन से सुन रहे हैं, रुचि नहीं है। अरे उद्धव जी ने तो ऐसी गोपियों की चरण की धूलि में स्निग्ध होने के लिए, अभिषिक्त होने के लिए भगवान से प्रार्थना की, आसाम हो चरण ऋण जुसाम हो। ब्रह्मा जी भी ऐसे ही कहते हैं गोपियों की चरण धूलि के लिए मैं तरसता हूं। अच्छा, ये जो अतुलनीय गोपियों का जो प्रेम उत्कर्ष है, प्रेम का जो उत्कर्ष है, जो कृष्ण भी इसको मानते हैं, किस लिए? किस लिए? ऐसा कोई करी नहीं, नारद नहीं कर सकते, उद्धव नहीं कर सकते, कोई भी जगत में नहीं कर सकता है, यहां तक कि नंद और जसोदा बाबा भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए ये चीज झूठी हो जाएगी, माया माइक हो जाएगी, कृष्ण झूठी दी है उनके लिए ऋणी बन रहे हैं, छल चातुरी कर रहे हैं, नहीं। दशाक्षर और अष्ट दशाक्षर मंत्र है। कब का मंत्र है? अनादिकाल से ब्रह्मा जी को उन्होंने नारायण के रूप में दिया, या कृष्ण ने स्वयं अपनी सरस्वती जी से शुद्धा सरस्वती के द्वारा उनको ये मंत्र दिया, और पीछे अपने बंसी के द्वारा उनको काम गायत्री दी। ये अष्ट दशाक्षर मंत्र है। पहले एक ही मंत्र शिष्य को दिया जाता था, इसी का नाम दीक्षा था और कुछ नहीं। क्या? गोपी जन वल्लभाय, यही दशाक्षर है, दस अक्षर है इसी को। देखा जैसे ये जीव सब शक्ति रहित हैं, इसलिए इनको और पूरा करने के लिए ये पूरा दिया, बीज समेत दिया। पहले बीज वाला नहीं होता था, अब इसके बाद में बीज नहीं रहेगा तो पेड़ कहां से होगा? नहीं, गेहूं का बीज ही नहीं रहे तो वो पेड़ पौधे कहां से होंगे? किंतु ये ऐसा ही है, इसलिए साधक जीवों के लिए अष्ट दशाक्षर अर्थात 18 अक्षरों से युक्त ये मंत्र दिया गया। तो इसमें क्या है? गोपी जन वल्लभ, ये परोढ़ा भाव है, परकिया भाव है। तो ब्रह्मा जी चाहते हैं, शंकर जी चाहते हैं, सभी लोग इस मंत्र को जपते हैं, तो ये अन्याय है? नहीं, ये ठीक। इसलिए शब्द की अद्भुत शक्ति के संबंध में जिनको ज्ञान है, यह बात उनसे छिपी नहीं है। कैसे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी को पता है। कैसे? उन्होंने देखा, अनुभव किया। महाप्रभु जी स्वयं कह रहे हैं, गुरु जी ने मुझको मुख दे करके शासन करके कहा, जैसे देखो वेदांत मत पढ़ो, वेदांत में तुम नहीं समझ सकोगे, इसलिए तुम हम जो तुमको सहज रूप में मंत्र देते हैं यही मंत्र कहो। इसलिए गुरु जी महाराज ने हमको दशाक्षर मंत्र दे दिया, गोपियों का ये गोपाल। कुछ दिन किया और वो देखा जो एक श्याम सुंदर सलोना, श्याम एक बालक है, बंसी मुरली उसके अधरों पर थी रख रही, दसवां अंगुलियां उसकी चल रही है, नृत्य कर रही है उसके ऊपर में, और अपने अधरों का रस मानो हृदय का ही सब कुछ मधुर भाव उसमें प्रकाश करता है, जगत विश्व ब्रह्मांड को, चेतन को अचेतन और अचेतन को सचेतन कर रहा है। मैं देख करके एकदम दौड़ा उनके तरफ में, किंतु वो धीरे धीरे पीछे हटता है, अंत में वो कहीं छिप गया। मैं पागल हो गया, मैं गिर पड़ा। इसी तरह से कभी जब मुझको दर्शन होता है तो हंसता हूं, और जब चला जाता है, छिप जाता है, तो मैं रोता हूं। कभी भूमि में लोटता पलोटता हूं, कभी कुछ करता हूं, कभी गाता हूं जोर से, कभी पागल हो गया हूं। ये मंत्र की शक्ति है। जाकर के गुरु जी से कहा कि गुरु जी किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार फल, आपने कैसा मंत्र दिया, मुझको पागल बना दिया, मैं होश में नहीं रहता इस मंत्र के कारण। गुरु जी ने आंगलिंगन किया और छाती से लगा कर, बेटा तुम्हारा जन्म सार्थक हो गया और मैं भी, मेरा जीवन भी सार्थक हो गया। ऐसा शिष्य को पाया जो मंत्र को इतनी जल्दी में इसने सिद्धि कर ली, इसका फल तो यही है। कभी हंसाए, कभी रोदाए, कभी रोदन करे, ये गुरु का कार्य है। ऐसा मंत्र दे, और शिष्य का कर्तव्य है इसको अनुभव करे, इस जन्म में ही उसका जीवन सार्थक है। चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में इसका देखा जाता है, सभी गोसाई लोगों का ऐसा ही जीवन है। ऐसा ही मंत्र का बल है। इसलिए ये मंत्र सब झूठे हो जाएंगे यदि नहीं पार किए भाव को माना जाएगा। तो कृष्ण के विभिन्न ध्यानों में या मंत्रों में उक्त भाव की झलक सृष्टि गोचर होती है, ये इसमें देखा जाता है। कैसे? बरहा पीड़ाभिरामम मृगमत तिलकम कुंडला क्रंत गंडम कंजाक्षम कंबुकंठम शितसुभगमुखम स्वादरे नस्तरेणुम श्यामं शांतं त्रिभंगम रविकरवसनम भूषितं वैजयंता गोपस्त्री परिवेष्टितो भजयते गोपस्त्री परिवेष्टितो, गोपस्त्रियों के द्वारा परिवेष्टित है। बस हो गया, लो धरो। हरे
चंद्राज राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा
पहले शिव गोस्वामी के संबंध में कुछ वर्णन कर रहे थे, तो शिव गोस्वामी के विचारों के संबंध में बोलते बोलते कुछ लोग जीव गोस्वामी के संबंध में ये बतलाते हैं, रूप गोस्वामी का जैसा विचार था जीव गोस्वामी का, उससे विचार भिन्न था। उन्होंने भजन में स्वकीय बात को स्थापित किया। रूप गोस्वामी ने भजन मार्ग में सर्वोत्तम स्वकीय बात का स्थापन किया है, सनातन गोस्वामी ने भी किया है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया है, किंतु इन्होंने इससे कुछ हटकर स्वकीय बात नहीं किया। उसके लिए हम लोगों ने पहले विचार किया उनके क्या क्या विचार हैं। हम लोग अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के विचार उछला करके यह बतलाएंगे कि रूप गोस्वामी जी ने जो कुछ कहा है, जी गोस्वामी ने भी वही कहा। भक्ति विनोद ठाकुर जी जज थे और परमार्थिक विषय में उनके निर्णय सबके लिए मान्य है, इसलिए उस पर हम लोग विचार करें। अभिजीत गोस्वामी के विचार हम लोगों ने पढ़ा है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के विचार यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने पहले ही जी गोस्वामी को प्रणाम कर बताया कि रूपानुगमय वो वैष्णव है, प्रधान वैष्णव, उनके लिए रूप गोस्वामी के विपरीत कुछ भी व्याख्या करना उनके लिए संभव पर नहीं है। उन्होंने दूसरों के लिए ऐसा कहा है, जैसे भागवत में परीक्षित महाराज जी ने वहां पर बैठे हुए योगी तपस्वी कर्मी और दूसरे दूसरे ऋषियों के लिए प्रश्न किया कि कृष्ण ने ऐसा जिगुप्सित कर्म क्यों किया, धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले आकर होते हुए भी और ऐसा क्यों किया। तो वो अपने लिए प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उनको उन्होंने सुब्रत कहा। सुब्रत मैंने क्या, एक तो ब्रह्मचर्य जीवन भर रहने वाले और सुब्रत अच्छे व्रत में, अच्छा व्रत मैंने क्या, गोपियों का यह जो भाव है उसको ऐसे वो वर्णन कर रहे थे तन्मय होकर, ये उनका व्रत, तो इसलिए सुब्रत भी कह रहे हैं। वो जानते हैं कि इनका कोई भी आधार्मिक वस्तु का वो अनुमोदन नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये सुब्रत हैं, इसलिए वो कह रहे हैं जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ये जीव गोस्वामी कभी भी रूप गोस्वामी के दुग्धाचरण नहीं कर सकते। विशेष करके एक देखा जाता है, इनके तीन प्रधान शिक्षा शिष्य हैं, एक हैं श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर और श्री महाराज। तीनों के भी ग्रंथ और उनके पद उनके विचार देखने से ऐसा प्रतीत होता है स्पष्ट कि इस सब लोगों ने रूप गोस्वामी के विचार के अनुसार में ही जीव गोस्वामी से पढ़ा और उसी का अनुमोदन किया जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं पार्थिव भाव इत्यादि गोपियों क्यों उनके भाव इसलिए ये कह रहे हैं कि मैंने शायद चार पांच बतलाया था
आप बताया परकीय भाव तो नहीं मानने पर मन से जुटा हो जाएगा इन पर बताया था
ये बतलाया था श्रीमद भागवत भी झूठा हो जाएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं ता बार्जमाना पतिभिः पितृभिः बंधु भातृभिः इसमें अपने पतियों के द्वारा मना करने पर भी उनकी सेवा करते हुए भी उन्हें छोड़ करके चल पड़ी यहाँ कृष्ण बंसी बजा रहे तो ये गलत हो जाएगा व्यास जी का या सुखदेव गोस्वामी का कहना भ्रातर पतयश्चव भाई और पतियों को भी वो छोड़ करके चली गई उनकी सेवा कर रही थी छोड़ करके चल पड़ी एवं यतपत्य पत्य सुहृदान अनुवृत्ति रंगम एवं यत्पत्य अपत्य सुहृदान अनुवृत्ति रंग सबको छोड़ करके कृष्ण के बंसी के नाद को सुन करके जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में छोड़ करके चल पड़ी यहां पर पति शब्द का पत्य अपत्य माने बच्चे और दूसरे के कृष्ण की दो प्रकार की माने कृष्ण की सेवा करने वाले ब्रज में बहुत सी रमणियां हैं गोपियां हैं उनमें स्वकिया और परकिया प्रधान स्वकिया कौन है वो कुमारियां जो कि कात्यायनी व्रत किया उनमें केवल कुमारियां थी उनके साथ में अंतिम दिन में और प्ररोढ़ा गोपियां गई थी उनको देखने के लिए नित्य सिद्धा भी गई थी वृंदावन में स्वकिया कौन है जो को कात्यायनी व्रत कर रही है कुमारी काए हैं कृष्ण से प्रीति है और उनको देख करके उत्फुल्ल हो जाती है ये और परोढ़ा माने विवाह हो गया है बच्चे नहीं है नित्य सिद्धों के संग में रह करके नित्य सिद्धा हो गई वो तो यहां पर जतपत्य पति लड़का तो है नहीं तो यहां अपत्य क्यों लिखा उनके जेठानी के देवरानी के लड़के जिसको अपना ही पुत्र मान करके उनकी उनको पालन पोषण करते हैं सुहृदान अनुवृत्ति रंग इत्यादि तद्गुणानेव गायन तो नात्मा गाराणी तत्संस्मरु न आत्मा आगाराणी संस्मरु कृष्ण के लीला कथाओं का गान करते हुए कृष्ण जब चले गए अंतरिक्ष अंतर्ध्यान हो गए तो ये गोपियां को खोज रही हैं खोजते खोजते क्या हुआ वो लीला की भावना आई उनके लीलाओं का अनुकरण करने लगी और उनका गान गान करते 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 तत् गुण गुणाने एवं गायन तो उनके गुणों को गाती भी न आत्मा आत्मा को भी भूल गए और आगाराणी आगार माने घर घर किसको कहते हैं घर ही घर ये भी तो एक घर है घर किसको कहते हैं
गृहिणी
गृहिणी रहेगी उसका पति रहेगा तब तो घर हुआ गृणी है ही नहीं तो घर कैसे, वो तो सबको घर होता है, इसे उस घर से तात्पर्य नहीं है, बल्कि जिसके पति हैं लड़के हैं ये सब मिल करके तब फिर घर पर है, तो अपने पति को भी इसमें भी वो हो गए। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान पति विलंघते अंत अच्युतागतान, सबको छोड़ करके पति सुतान्वय सबको छोड़ करके चली गई। एवं मदत्थो हितलोक वेद स्वाना अनुवृत्ति वृत्त, इसमें भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हमारे लिए कृष्ण कह रहे हैं जब लौट करके आए उनको दर्शन दिया गोपियों ने पूछा प्रीति करने वाले को प्रीति कोई करता है, जो प्रीति करता है उसको वो या नहीं करता उसको भी प्रीति करते हैं, जो प्रीति करता है नहीं करता उस किसी को प्रीति नहीं करते हैं, आप उसमें कौन से हैं, उसी में सबका उत्तर देते हैं। अंत में कहते हैं एवं मदत्थो, मैं इन नौ में से कोई नहीं हूं, तीन तीन को उन्होंने विभाग कर दिया, पहले वाला एक दूसरे वाला दो और तीसरा वाला
चार,
तो चार और छह एक सात और दो और लगा है नौ, नौ में से मैं कोई एक नहीं बल्कि मदर्थ उज्जित लोक वेद स्वानंदमयी वो अनुवृत्ते यथाधनो यथाधनो लब्ध धनो यथा लब्ध धनो अलब्ध धनो न चिंतयानी इत्यादि मुझे याद नहीं किया। कहते हैं कि जैसे कोई अलब्ध माने गरीब आदमी जिसको कुछ नहीं और उसको प्रचुर धन मिल गया और देखते देखते हाथों से कोई उड़ा ले गया, अब वो हाय है जैसा करता है वैसे ही मैं तुम्हारे धन स्वरूप हूं संपत्ति स्वरूप दुर्लभ, और मैं जब चला गया तो हमारे लिए तुम लोग हाय हाय कर रहे हो, उस प्रेम को जो दुर्लभ प्रेम तुम्हारे अंदर में उसको और बढ़ाने के लिए मैं छिप गया मैं दूर नहीं गया। एवं मदर्थो हित लोक वेद, तुम लोगों ने हमारे लिए लोक वेद लज्जाशील धर्म अधर्म सब कुछ पत्या कर दिया, तो मैं तुमको कैसे छोड़ सकता हूं, इसलिए तुम्हारे इस प्रेम को जो ये संपत्ति है इसको बढ़ाने के लिए मैं बीच बीच में ऐसा करता हूं। ये पढ़े जैसे अलब्ध धन एक दरिद्र आदमी को कुछ मिल जाए चिंतामणि हाथों में और लेने के बाद में फिर वो गुम हो जाए कोई ले ले तो उसके लिए एकदम छटपट छटपट के जैसे मणि आड़ा सर्प मणि के लिए प्राण प्रत्याग कर देता है। कैसे वनों में जाते हैं लोग मणि के लिए, अब वो प्रथा है कि नहीं, कुछ सर्प होते हैं उनकी मणियां होती हैं तो वो अंधकार में जाते हैं उस मणि को रख करके उसी के प्रकाश में चारों तरफ में अपने आहार को खोजते हैं और उसी को ज्ञान देख करके वो होते हैं कुछ ऐसे, वो ऊपर पेड़ पर चढ़ करके कोई ढक्कन लेकर के लोहे का उसके ऊपर में गिरा देते हैं ऊपर से और वो एकदम पागल हो जाता है और वहीं पर प्राण छटपट छटपट करते हुए उनको छोड़ देता है, उसके बिना जी नहीं सकते। तो वैसे तुम लोगों का भी प्रेम बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा किया। कृष्णाभवंतम आत्मानम यावती गोपी जोषितः, जोषित किसको कहते हैं, विवाहित पत्नी को जोषित कहते हैं, इसलिए यावती गोप जोषितः गोपों की जो जोषिताएं हैं पत्नियां हैं कृष्ण ने अपने को उतना ही बनाया तो यहां पर भी बतलाया गया है। मन्यमाना स्वपाक स्वस्थान स्वान दारान बजौकसः, मन्यमान यहां कहते हैं जब गोपियां एक ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद में कितने लाखों वर्षों के बाद में रात हो गई उस दिन और वो रात के बाद में जब वो घर में लौटी कृष्ण के कहने पर तो उस समय में पतियों ने अपने स्त्रियों पर क्रोध नहीं किया, क्यों नहीं किया उसी के लिए कह रहे हैं। मन्यमाना उनके पतियों ने स्वान दारायण उन गोपियों के जो पति हैं अपने पत्नियों को अपने पास ही में देखा। कैसे देखा? जोग माया के प्रभाव से देखा। जोग माया ने उतने ही गोप कुमारी गोपियों को वहां पर प्रकट कर दिया अपनी जोग माया के प्रभाव। और उनके पत्नियों ने देखा कि हमारे साथी में घर में रह रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, खिला रही हैं, घर की सेवा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला कि हमारी स्त्रिया कहां गई, इसलिए बिगड़ने का कोई प्रश्न नहीं आया इत्यादि। यह सब उदाहरण देकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सुखदेव गोस्वामी स्वयं श्री कृष्ण और गोपियों के मुख निश्चित, इनमें कुछ वचन गोपियों के हैं और कुछ सुखदेव गोस्वामी के हैं, इन वाक्यों के प्रौढ़त्व और उपपत्तित्व भाव स्पष्ट रूप से प्रस्तावित करते हैं। रासलीला माया द्वारा रचित मिथ्या नहीं है। जी गोस्वामी ने कहा था क्या, ये जो माया प्रत्ययित भाव, ये सब गोपियों का दूसरा कोई पति नहीं हो सकता, ये गोपियों के स्वयं, ये अपनी शक्ति के स्वरूप शक्ति के ये प्रकाश हैं, इनमें ये सब की संभावना नहीं है, नित्य कृष्ण की ही है, उनका दूसरा कोई पति हो सकता है ये कभी संभव नहीं है, उसके लिए वो मिथ्या कृष्ण भाव। किस लिए कहा? साधक की अत्यंत निम्न कोटि में है जिनके लिए ये प्रश्न होता है, हम लोगों को ही ये प्रश्न नहीं होता, कभी आज तक प्रश्न नहीं उठा जी गोपियां उनकी स्वकीय तिथि पर किया थे, ये आता ही नहीं है तो उन लोगों को क्या आएगा। तो इसलिए जो कि अत्यंत निम्न स्तर में है भजन राज्य के, कुछ भजन नहीं जानते हैं, जो कि तपस्वी और हैं, शुद्ध गुरु से पदाश्रय नहीं किया, कुछ हरि कथा नहीं सुनी जिनको, उनको ये सब प्रश्न होते हैं, उनके लिए जी गोस्वामी ने ये कहा। वो जानते नहीं है जैसे जोग माया महामाया क्या होती है, उसकी क्रियाएं क्या होती हैं, वो जानते नहीं, उनके दिमाग में नहीं आएगा ये जोग माया और महामाया किसको कहते हैं, सामंजस्य नहीं कर सकेंगे, कहेंगे जैसे भागवत ये झूठा लिखा गया। क्यों? इसलिए झूठा लिखा गया, अरे वही जब वसुदेव जी जबकि वहां पर गए तो जोग माया को देखा स्वयं ने, उनको उठा लिया गोदी में, और फिर वही भागवत कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कंस के हाथों से वो उड़ करके अष्टभुजा दुर्गा हो गई, ये महामाया हो गई, ये कभी संभव है? एक ही चीज दो, वो सामंजस्य नहीं कर पाए। आया समझ में? मूर्ख, समझ में क्यों नहीं आया? वो कहते हैं ये गधा है ये घोड़ा है, एक ही चीज को, ये होगा कि नहीं? एक ही चीज गधा घोड़ा दोनों होगा है? ये बहुत बुद्धिमान और बहुत मूर्ख है एक ही व्यक्ति, ये होगा? और ये कहा ये बड़ा भारी मूर्ख है, और अभी थोड़ी देर के बाद में कह दिया नंबरी गधा है, और फिर कह दिया ये बड़ा बुद्धिमान है, तो वचन में असंगति रही, तो इसका मतलब है वो गलत। अभी भागवत में वो पहले बतलाया जिसे जोग माया उत्पन्न हुई कहां? गोकुल में, वो भगवान की अपनी पराशक्ति है, और यह कंस के हाथों से निकल करके वो दुर्गा अष्टभुजा हो गई, वो महामाया हो गई, ये कैसे संभव है? तो उनके दिमाग में ये सब चीजें नहीं आता, ये कैसे हो गया? वो आंख से देखेंगे बात उसको सत्य मानेंगे, उन लोगों के लिए ये नहीं है। ये तो बहुत उन्नत कोटि के साधकों में भी उत्तम भागवत हो, या अब मध्यम भागवत में आकर के अब उत्तम भागवत होने जा रहा है, उन लोगों के लिए ये सब चीजें भागवत है, भागवत है ये साधारण लोगों के लिए नहीं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने भागवत को विशेष करके दशम स्कंद को वर्णन करने के लिए मना किया कि इनको ये समझ में आएगा नहीं, किंतु इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है भक्ति में प्रवेश करने के लिए। यदि भक्ति करनी है तो दशम स्कंद जरूर पढ़ना पड़ेगा, किंतु पढ़ेगा कौन? जो सद्गुरु प्रदाश्रय करके संबंध ज्ञान हो गया, अनर्थ अर्थ को अब समझने लगा, ऐसे व्यक्ति ये समझ, साधारण आदमी पढ़ेंगे उसका सामंजस्य नहीं कर पाएंगे, उल्टा अर्थ लगाएंगे, कदर्थ कर देंगे, कोई मरेगा कोई इसका रहेगा, इसलिए भागवत पढ़ करके बहुत से लोग मरते हैं और बहुत से लोग तर भी जाते हैं। रासलीला माया द्वारा रचित मिथ्या नहीं है, यदि है तो लक्ष्मियों की उपेक्षा अपेक्षा गोपियों का उत्कर्ष कैसे प्रमाणित होगा। रासलीला को निकाल दो भागवत से, तो द्वारका की महिषियों से और इनकी गोपियों की श्रेष्ठता कैसे होगी उन लोगों से, वो लक्ष्मी है, कैसे होगा से। इसीलिए उन्होंने कहा कि गोपियों को जो कृष्ण से सौभाग्य प्राप्त हुआ वो द्वारकावासियों को और लक्ष्मियों को प्राप्त नहीं हुआ। नायम स्वयं ओम नितांत रसे प्रसाद इत्यादि। भागवत ने इसी के आधार पर गोपियों को लक्ष्मी से सिर्फ बतलाया, नायम सियो उंग नितांत रसे प्रसाद स्वर्जोषिता नलिन गंध रुचोकता अन्यंग रासत तवे भुज दंड गृहित कंठ लब्धा शीशां जदुद्गात ब्रज सुंदरी ना। ब्रज सुंदरियों को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जो लक्ष्मियों को नहीं हुआ, द्वारकावासी द्वारका की महिषियों को जो नहीं हुआ, रामचंद्र जी की सीता को जो नहीं प्राप्त हुआ, नारायण की लक्ष्मी को जो प्राप्त नहीं हुआ वो उनको प्राप्त हुआ। क्या मुझे दंड गृहित कर माला पहने हैं, क्यों अपने ही माला बन गए और उनके गले में लटक गए, उनसे प्रणय की भिक्षा मांगे लक्ष्मी और द्वारका वासियों से नहीं, उनको तो डांट दिया तो बस गड़बड़ हो गया उनका दिमाग। रुक्मिणी को कह दिया तुम दूसरे से शादी कर लो और जिससे शादी करना चाहती है बतलाओ, मैं उसको बुला करके उसको अर्पण कर दूं, बस वो थर्रा गई और गिर गई केले की, जब पेड़ कट कट जाता है गिर जाता है ना ऐसे वो गिर गई और सांस नहीं रहा, हाँ हाँ करता था और वो भी हमसे कहती थी कि हमारे कुंजे से निकल जाओ, किंतु मैं तो सोचता था जैसे थोड़ा सा परिहास हो जाएगा, तो तुम परिहास करने लायक भी नहीं है। फिर अंत में उनको ठीक किया, तो इसलिए इन लोगों को जो सौभाग्य नहीं है गोपियों को अधिक सौभाग्य, ये कैसे प्रमाणित होगा, रासलीला के द्वारा ही होगा, उपपति भाव के द्वारा ही होगा, जिसमें कोई भी संबंध कारण नहीं है जिस कार्य में, अहेतुक है, इनमें विवाह होने पर ही इनका प्रेम होगा और उनका प्रेम नित्य सिद्ध विवाह हो न हो नित्य ही से उनका प्रेम है, उसका आदि नहीं है अंत नहीं, इनका विवाह से आदि हो सकता है और उनका विवाह ही नहीं है तो आदि कब अनादि उनका है, इसने अनादि काल से ही वो कृष्ण की प्रिया है, उसका हेतु नहीं है, नहीं तो हेतु दूर होने पर वो वस्तु नष्ट हो जाएगी, हेतु जिस काम पर रहेगा। किसी का सौंदर्य देख करके हमने शादी की, सौंदर्य यदि नहीं रहा तो क्या करेंगे, दूसरे को ले आएंगे सौंदर्य वाली, किसी कोई हेतु होने से उसका हो जाएगा, इसलिए जिस प्रेम का हेतु होता है विवाह उसमें प्रेम उतना नहीं होता, जिसका कोई हेतु नहीं है, गोपियों का प्रेम ऐसा है किसी चीज का हेतु नहीं है, स्वाभाविक निर्मल है उनका प्रेम। यदि रासलीला माइक हो गई तो फिर श्रीमद् भागवत ही मिथ्या हो गया और गोपियों का उत्कर्ष भी समाप्त हो जाएगा, फिर रुक्मिणी और सत्यभामा और ये बल्कि वो श्रेष्ठ हो जाएंगे, कौन महिषिया श्रेष्ठ हो जाएंगे, सीता जी श्रेष्ठ हो जाएंगे, कहीं भी किसी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से कहीं भी किसी ने दाम्पत्यमयी रासलीला का वर्णन नहीं किया, जैसे रामचंद्र जी को लोग रसिक कहते हैं आधुनिक लोग, कुछ कृष्ण की लीला से वो प्रभावित हुए और उनको भी रसिक शेखर कहना आरंभ कर दिया, तो रसिक शेखर कहेंगे तो बहु बल्लभा हो नहीं हुई, ये नहीं स्वीकार तो फिर रसिक कैसे हुए। दूसरी बात तो रासलीला कृष्ण में है, रामचंद्र जी की रासलीला कैसे करेंगे, कैसे होगी, वो मिथिलावासी कुमारियों को लेकर के कहते हैं, किंतु उनको तो गोपी जन्म हुआ तब इधर में हुआ, इसलिए नहीं समझते। कौज कृष्ण की तो 16,108 रानियां थी, 16,108 रानियों के साथ में समुद्र के किनारे राज कर सकते थे, तो क्यों नहीं किया? दाम्पत्य में ये संभव नहीं है। क्यों? क्यों
मर्यादा
है, इसमें रात में मर्यादा हट जाती है, वो अपनी स्त्रियों के साथ में नाच गान करें तो क्या हर्ज है? हाँ? क्या सारे नहीं तुम समझते? गोपियां अपने चरण में अलता लगा करके कृष्ण के सिर पर रख देगी, छाप लगा देगी। कोई अपनी पत्नी ऐसा कर सकेगी? मर्यादा का उल्लंघन, कहेगी हमारे पैर अब ये थक गए, तो पति आकर के रामचंद्र जी सीता जी जा रही हैं उनके पैरों में मान लिया कांटा गड़ गया, क्या होगा? लक्ष्मण निकालेंगे कि नहीं? हैं? नहीं निकालेंगे। क्यों? सीता जी कभी भी दूसरे का स्पर्श नहीं कर सकेंगे, इसे लक्ष्मण ने, यदि स्त्री होगी तो कोई कर देती, लक्ष्मण जी तो देवर हैं, इसलिए उनको नहीं छेड़ेंगे, देखेंगे हाथ काट करेंगे हाय हाय हो गया, किंतु कुछ कर नहीं सकेंगे, सीता जी का पैर नहीं छू सकते। रामचंद्र जी आएंगे, दबते हुए आएंगे, मर्यादा को देखते हुए आएंगे, देखेंगे ये कोई है कि नहीं, तो भी नहीं निकाल सकते। क्यों? सीता जी कहेंगे नहीं ऐसा मत कीजिए, दुख से मरेंगे, अपने आप जैसे तैसे निकाल, या जल्दी से छत खींच दिया बिना पैर छुए हुए ही, ये हो सकता है। सच में मर्यादा का ख्याल रखें, इसलिए वो भी रास नहीं कर सकते। यहां पर रास होगा, पटरानियां सत्यभामा इत्यादि जब थक जाएंगी तो उनकी सेवा करेंगे, झिड़क सकेंगे? ये रुक्मिणी सत्यभामा कृष्ण को क्या कहेंगी, उनसे प्रश्न करेंगी? ये सब नहीं होगा, मर्यादा वहां पर टूट जाएगा, इसलिए उनके लिए ये सब संभव पर नहीं है। इसलिए कभी किसी ने उन लोगों का कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण में भी वो सभी नहीं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के अतिरिक्त और किसी का रास्ता वर्णन नहीं किया। और इस दाम्पत्य लीला, इस लीला को यदि कोई माइकी कहे तो भागवत धरा रह जाएगा, भागवत का इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। निगम कल्प तरो गलित न कलम सुख मुखा आगम संतम, ये कल्प रह जाएगा। यदि कोई उपपति वाले जितने भी भाव है उसका उल्टा अर्थ करे और उन अंशों को भ्रम पूर्वक जान करके प्रत्याग कर देंगे तो रासलीला की कोई उपयोगिता ही नहीं रही। रासलीला के पहले वो वेणु भी कोई महत्व नहीं रहे। उद्धव जी का ब्रज में जाना भ्रमर गीत कोई महत्व नहीं रह जाए, सब जो भागवत के जो विशेष अंश हैं जिसे इसको रस ग्रंथ कहते हैं वो सब समाप्त हो जाएगा। न पा रहे हम निर्बद्ध संयोजाए, इस श्लोक का अर्थ हम क्या करेंगे? तुम्हारा मिलन परम पवित्र है, सर्वथा निर्दोष प्रेम है, बिना कोई दाग का निर्मल प्रेम है। तुम्हारे इस साधु कृत्य का कभी भी ऋण चुकाने में असमर्थ हूं, स्वयं पर ब्रह्म कह रहे हैं, अपने मूड में कह रहे हैं। उस समय में कृष्ण की बुद्धि चंचल नहीं है, स्थिर होकर के यह निर्णय दे रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं। राशि लमाई होने पर इस पद्यांश के परम प्रेम उत्कर्ष की प्रमाणिकता अमूलक और वास्तविक हो जाएगी। क्या हुआ? कृष्ण ने कहा ना, मैं देवताओं जैसी आयु पाकर के भी मैं तुम्हारा ऋण से उऋण नहीं हूं। ये जो श्लोक है मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला, उसी श्लोक का नीचे वाला दुर्जर गृह श्रृंखला संवृत्त तद प्रतिजात साधना यह पद्यांश भी परोढ़ा अंगोपति भाव का प्रतिपादक है। दुर्जर गृह श्रृंखला, गृह की श्रृंखलाओं को हथकड़ी और बेड़ियों को काट करके, गृह की श्रृंखला क्या होती है? अभी एक आदमी आए हमारे पास, दंपति आए, पति और पत्नी दोनों हमारे पास में प्रार्थना करने ले गए। हमारी स्त्री हमारी बात नहीं मानती है और पत्नी कह रहे हैं कि ये हमारे बात नहीं मानते हैं महाराज जी, आप विचार करके हमको बतलाइए। पत्नी कह रही है हम किसी स्थिति में मथुरा छोड़ना नहीं चाहते, और पति कह रहे हैं जैसे हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं उनकी व्यवस्था के लिए दिल्ली जाना जरूरी है, वहां जाकर के उनकी व्यवस्था करनी है, कुछ दिन व्यवस्था हो जाने पर अपने पैरों पर टिक जाएंगे, उनकी शादी विवाह करके फिर हम आए। तो पहले मैंने स्त्री का पक्ष लिया, मैंने कहा हम लोग हर बार स्त्री पुत्र छोड़ करके जलांजलि दे करके आपके जैसे बिजनेस को भी, रुपये के लिए ही तो बिजनेस होता है, तो ये छोड़ करके हम लोग यहाँ मथुरा में बात करते हैं और आपके घर से एक दो रोटी लेकर के जीविका निर्वाह करके मथुरा नहीं और वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं हो, भले ही हमारा कुछ भी ना हो किंतु मथुरा वृंदावन को किसी स्थिति में, चाहे भले ही वो वैकुंठ मिल जाए नहीं छोड़ेंगे। ये जगत की तो बात और धन संपत्ति तो क्या बात है, इसलिए आपकी स्त्री की बातें बहुत ही युक्ति और सुंदर है। आप मरने के लिए बूढ़े होकर के आए, बूढ़े की स्थिति आई, आप 60 वर्ष के हो गए, 65 वर्ष, आपकी पत्नी भी 62-63 वर्ष की है, सारा जीवन यहां पर कटाया और अंत में जाएंगे भदेश में मरने के लिए। उन्होंने कहा सर बच्चों को तो देखना, तो आप मर गए होते तो फिर बच्चे का क्या होता है, क्या होता बतलाइए, आप उनके पालन पोषण करने और नौकरी देने वाले, व्यवस्था करने वाले आप हैं? तो वो कुछ उनके बोझ नहीं आया। कहने बहुत से लड़के हैं जिनके पिता माता मर गए हैं, वो क्या हो कैसा हो रहा है, उनका चल नहीं रहा। और भी कुछ युक्तियां उन्होंने, मैंने उनका खंडन किया, इसलिए बड़ी प्रसन्न भाई। मैंने कहा किंतु देखो सारा जीवन जिनके साथ में रहा, अब थोड़े दिन के लिए उनका तुम संग छोड़ करके अकेले यहां पर रहेगी और वहां रहेंगे, इसलिए हमको ये उचित नहीं जान पड़ता है, या तो इनको मना लो और नहीं तो उनके साथ में तुम भी दिल्ली जाओ और वहां से बीच बीच में आना, हम तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देंगे रहने सहने। अब पति उसके बड़े प्रसन्न हो गए, उसका मुख थोड़ा सा खड़ा
भाई मेरा कुछ चले दिया।
सचमुच में पूछा जाए तो क्या करना उचित है? अब मर्यादा के तरफ में जब ध्यान देते हैं तब देखते हैं कि ये स्त्री और पति का रहना ठीक है, ये सांसारिक मर्यादाएं हैं, और इस मर्यादा को यदि कोई भंग करता है तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी बात, जब भक्ति के परमार्थ से विचार करते हैं, ऐसी मर्यादाओं में रखा ही क्या है, आज न कल तो वो दोनों में से कोई एक तो जाएंगे ही, अपना परमार्थ छोड़ करके नित्य काल के लिए इसको चौपट करके दूसरे जगह जाएंगे। यदि कहो जैसे जहां भी रहेंगे वहां पर संग करेंगे, भजन करेंगे, वहां ऐसा करने से हो जाएगा, तो तब फिर ब्रज की महिमा क्या है, महिमा क्या है? हम तो भजन नहीं करेंगे तभी इसको नहीं चढ़, कोई कहेगा जैसे आपको दूसरी जगह हम कहते हैं मान जैसे आपको प्रणाम है मैं इस आश्रम में नहीं रहूंगा, हम दूसरी जगह हम रह करके हम जमुना के किनारे रह लेंगे किंतु हम नहीं छोड़ेंगे। किंतु मर्यादा की जहां बात आती है तब तक फिर वहां पर मर्यादा की दृष्टि आने से ही बस सब कुछ ये खत्म हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला, ये दुर्जर गृह श्रृंखला वो मेरी बात मान गई, बड़ी प्रसन्न हो गई, अंत में पति भी प्रसन्न हो गए। अच्छा बीच बीच में उनको हम लाएंगे और ले जाएंगे, ले जाएंगे, यही पर सुलह नामा हुआ। ये दुर्जर गृह श्रृंखला, छोटे छोटे बल्ब बिल बिलाते हुए बच्चे हैं, इतने नन्हे नन्हे नूने हैं, देखने के वाला कोई नहीं है, क्या पति ऐसे समय में बच्चों को रोता हुआ छोड़ करके भजन करने आ जाएगा? भागवत में ऐसा लिखा प्रहलाद महाराज जी के चरित्र में उपदेश। अभी विवाह करके नई नवेली आई है घर में, अभी अभी आई, अब कुछ वैराग्य हो गया तो वो क्या पति उसको छोड़कर के चला जाएगा? माता पिता मरने के लिए बूढ़े बैठे, हमको कोई देने वाला, कोई सेवा करने वाला है? कौन ऐसा निश्चय व्यक्ति होगा जो उनको छोड़कर के भगवान का भजन करने आएगा? वो तो सुखदेव गोस्वामी जैसे यदि कोई हो, निष्ठुर परम निर्दय सांसारिक दृष्टि से कह रहा है, किंतु वह निष्ठुर नहीं, वह सबसे अधिक प्रेमी, सबसे कोमल हृदय का है, जो कृष्ण जन्म जन्मांतर के माता पिता भाई बंधु उनको छोड़कर के ये संसार, ये निष्ठुरता है। तो ये कह रहे हैं जो मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला, गृह की श्रृंखलाएं ऐसी हैं सोने की मोटी मोटी हथकड़ी और बेड़ी से भी अधिक हैं, जिनको कोई भी इंद्रिय के द्वारा कोई भी इंद्रिय दास व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति नहीं है, असमर्थ व्यक्ति उनको नहीं छोड़ सकता है, बड़ा भारी कठिन है। नहीं तो ये ब्रह्मा जी ने जन्म से ही उसके अंदर में ऐसा जन्म दे करके उसके साथ साथ में ये माया दे दी है, मोह दे दिया है, इसीलिए आदमी समझ बूझ करके भी कोई नहीं। बूढ़ा आदमी से ये सोचता है कि मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, अब मुझे कौन देखेगा, जो पेट में देखा वो अब नहीं देखेगा, तो मैं क्या करूं? भजन करो। कैसे? जैसे हमारे पूर्वजों ने किया है। किंतु फिर भी वो मोह गृह श्रृंखला संवृत्त माने काट करके, कैसे